Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Text Number 3. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहकणललिता श्रीविशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत कदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अध्ययनो परम गुह्य ज्ञान अर्थात राजविद्या राजगुह्यम। श्लोक नंबर 3। भगवान कहते हैं, अश्वत्थधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्वत्थधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्वत्थधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ति मृत्यु संसारवर्त्मनि। शब्दात् अश्वत्थधाना अर्थात जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन पुरुष मना जीव जो भी लोग होते हैं, अगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं है किसके प्रति, धर्मस्य यानी धर्म के प्रति, अस्य मतलब इस जो मैं आपको अभी भागवत धर्म यानी जो भगवान अभी उपदेश देने वाले हैं जिस राज्य विद्या का, भगवान कहते हैं इसके अंदर जिसको श्रद्धा नहीं है हे परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, अप्राप्य मतलब कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे माम मुझको, फिर क्या होगा उनका आगे कहते हैं भगवान, निवर्तन्ते वो लौट आएंगे, मृत्यु संसार वर्तमनी वो बारंबार वर्तमनी बार बार इसी संसार के अंदर जो मृत्यु संसार है उसी के अंदर बार बार उनको वापिस आना पड़ेगा, जिनको इस धर्म में यानी भक्ति योग में जिसको श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और वो बारम्बार इस मृत्यु लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु लोक में बार बार उसको आना पड़ेगा। अनुवाद, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है, महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर से कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 में कहा गया है यथा तरो मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियां तथा पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को यह चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत विधि की है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे रहे हैं तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव से कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उपदेशों उद्देश्यों से कृष्ण महानामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वे इस विधि को त्याग कर पुनः अपने धर्म में लगे रहते हैं। कृष्ण महानामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण महानामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न ही श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण महानामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित होती है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। श्री प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु दुर्वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भगवद्गीता राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हम नवा अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान ने शुरू में ही हमें बताया कि अर्जुन ये इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तुम क्योंकि ईर्ष्या नहीं रखते हो मुझसे, तुम क्योंकि भगवान नहीं बनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा इस भौतिक जगत में आने का और भगवान से बिछड़ने का यही कारण है, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या रखते थे और भगवान बनना चाहते थे। तो साधारणतः कोई कहेगा, नहीं नहीं, हम तो भगवान बनना नहीं चाहते थे, हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि हम भगवान बने। भले भगवान का लेबल नहीं लगाना चाहते, लेकिन फिर भी भोक्ता बनना चाहते थे, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो हमारे पास है उससे हम खुद को कैसे आनंदित बनाए, यही भगवान बनने की परिभाषा है। तो थोड़े थोड़े लेवल का सब कोई भगवान बनना चाहता था, लेकिन अर्जुन को भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके हो कि तुम भगवान के दास हो, इसी तुम भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए उत्सुक हो, इसीलिए क्योंकि तुम अब मेरी शरण में हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये जब तुम समझ जाओगे यज्ञ अथवा मोक्ष से अशुभात, जितने भी भौतिक दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, उन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। और आगे भगवान ने कहा राज विद्या, यह वो विद्या है जिसके द्वारा तुम अत्यंत ही सरलता से इस भवसागर से स्वयं भी पार हो सकते हो और इसके द्वारा आप सबको पार करा सकते हो। ये ऐसा राज्य विद्या है। वास्तव में हम जितनी भी विद्या प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में, वो इसीलिए है ताकि हम दुखों से बचें, है ना, दुखों से निवारण चाहते हैं। अब इस संसार में कोई जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो गलत कार्य करता है, है ना, उसने गलत कार्य किया कोई, और जिसके कारण उसको उस गलत कार्य का दंड मिलता है और उस दंड के कारण उसे दुखी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछे कि जीव गलत कार्य क्यों करता है, तो इसका मतलब यही है, इसका उत्तर यही है कि वो गलत कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञान में है। उसके अंदर अज्ञान है जिसके कारण वो गलत कार्य करता है और गलत कार्य करने से उसे दंड मिलता है। दंड प्राप्त करने के बाद ही उसे कष्ट मिलता है। तो विद्या का मतलब होता है, अगर अज्ञान से आपको दुखी होना पड़ता है तो ज्ञान से आप, ज्ञान का मतलब है आपको सुखी हो, वो ज्ञान आपको सुखी करे। परंतु हम भौतिक जगत में देखते हैं, जितनी आजकल जिस लोग ने जितनी जितनी बड़ी बड़ी एजुकेशन प्राप्त की है, भले MA किया, BA किया, PhD किया, MBBS किया, जितना भी, लेकिन वो दुखों को समाप्त नहीं कर सके, है ना, तो इसका मतलब है वो ज्ञान जो प्राप्त किया उन्होंने, वो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो दुखों को समाप्त कर सके। हाँ, कोई भी जीव इस संसार में चाहे वो कितना ही एजुकेटेड क्यों न हो, वो दुखों से तो रहित नहीं है। जैसे अभी ये ना, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बीमार होना, उससे उसके साथ साथ मृत्यु आना, वृद्ध होना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये क्लेश तो कोई नहीं बचा। तो मतलब इनकी विद्या में जो आज ये मॉडर्न सोसाइटी में जो एजुकेशन है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि जीव के वास्तविक कष्टों को समाप्त कर सके। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह राज्य विद्या है जो तुम्हें वास्तविक सुख, सुखम कर तुम वास्तविक सुख प्रदान करेगी। और साथ में भगवान ने कहा राज कुहियम, कि ये परम सीक्रेट है, मतलब ये सबसे ज्यादा सीक्रेट विद्या है, गोपनीय ज्ञानों का राजा है ये। तो एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इसको गोपनीय क्यों कहा है, है ना, ये तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान तो इतना ओपन सीक्रेट है, सबको मिल जाता है। आप आज मार्केट में जाओ तो आपको बहुत ही सस्ते, मतलब पॉकेट साइज भगवद गीता, है ना, 20-25 रुपए की भी आपको मिल जाएगी। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं राज कुहियम, कि ये जो ज्ञान है वो बहुत सीक्रेट है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो वो ज्ञान सीक्रेट क्यों है, उसका उत्तर भगवान आज हमें इस श्लोक नंबर 3 में देते हैं। भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यह ज्ञान, यहाँ पर भगवान ने कहा धर्मस्य अस्य, अस्य मतलब ये जो ज्ञान है वो केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है। लेकिन जो श्रद्धा विहीन है उसे यह बात, उसे यह ज्ञान यानी भक्ति योग समझ में नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि हम केवल श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति योग में प्रवेश कर सकते हैं। ये जो हम भक्ति योग पढ़ रहे ना, भगवान श्री कृष्ण जिसके विषय में भगवान ने कहा सुखम कर तुम अव्ययम, ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी रास्ते हैं वो कष्टमयी हैं भगवान तक पहुंचने के। ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन ये कैसा है, सुखम है। और भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयंतो मां, क्षमा 8.14 में भगवान ने बताया अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना, जो अनन्य चित्त के साथ सदैव मुझे स्मरण करता है अर्थात भक्ति योग को स्वीकार करता है, तस्याम सुलभा पार्थ उसके लिए बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ। तो मतलब ये भक्ति योग प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए जीव के अंदर, वो है श्रद्धा। श्रद्धा के बगैर आप भक्ति योग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात को भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताया 4.39 में। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है केवल उसी को ज्ञान समझ में आएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है राजगुह्यम कि ये टॉप सीक्रेट है, सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। और भगवान ने 4.40 में उसको बहुत ही सुंदर बताया अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको न अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। अज्ञश्च जो ज्ञानी नहीं है, जो मूर्ख है, जो शास्त्रों को समझते नहीं है और शास्त्रों के अंदर जिसकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धानश्च संशय आत्मा जिनके अंदर बहुत सारे संशय हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। भले इस भौतिक जगत में हम देखते हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है आज उन्हीं को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो बोलते नहीं कौन है भगवान, क्या है भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं है, ये भौतिक जगत केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है, खाओ पियो मजे करो यही जीवन का लक्ष्य है। और आगे किसने देखा है, शास्त्र किसने कहा है कि शास्त्र सच्चे हैं, हम नहीं मानते इसको। तो भले ही इस भौतिक जगत में उनकी बात को सराहा जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, माने या ना माने उसका विनाश हो जाएगा। और नायम लोको अस्ति न परो ना सुखम संशय आत्मना, चाहे वो इस लोक में रहे या किसी दूसरे लोक में चले जाए, ना सुखम संशय आत्मना उसे कभी भी संशय नहीं मिले, संशय वाले को कभी भी सुख नहीं मिलेगा। और यह जो इसके अंदर श्रद्धा रखता है, भगवान कहते हैं सुसुखम, उसे ही वास्तविक सुख प्राप्त होगा। तो ये जो भक्ति योग है उसका आधार है श्रद्धा। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत में भक्ति के 9 स्तर बताए, नवदा भक्ति नहीं, भक्ति के आगे बढ़ने के 9 स्तर बताए, जिसमें पहला है अदव श्रद्धा। अदव श्रद्धा का मतलब होता है सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो आप चाहे कितनी ही भगवान की भक्ति भी करते हो, भले आप है ना भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन आपको उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, आप केवल कार्य कर रहे हो परंतु उसका वास्तविक लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा। भगवान ने कह दिया देखो तुम्हारे अंदर यदि श्रद्धा नहीं है तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। भक्ति का मतलब है भगवान को प्राप्त करना, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान प्राप्त करना असंभव। भगवान ने साफ कह दिया अप्राप्य माम, कोई संभावना नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करे। इसी से बारंबार जब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तो भगवान ने कहा कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, उसे बार बार इस मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। मतलब आपके भगवत प्राप्ति के और आपके बीच में एक श्रद्धा की डोर है, ये श्रद्धा ही है जो आपको भगवान प्राप्त कराती है। और अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो केवल श्रम, शास्त्र कहता है कि धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयह नोत्पात यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर आप सारे धर्मों को, जितने भी आप धर्म मतलब समझते हो, माता का धर्म, पिता का धर्म, व्यक्ति का धर्म, ये संडे को ये करना, मंडे को ये करना, ट्यूसडे को ये करना, जितने भी धर्म हैं आपके, धर्म सुनिश्चित पुंसाम, उसको आप बहुत ही सुनिश्चित तरीके से करो, लेकिन अगर भगवान के प्रति, भगवान के शब्दों के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति नोत्पात ये यति रतिम, आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, आपकी रति उत्पन्न नहीं होती है, तो श्रम एव ही केवलम, जैसे भूसे का एक ढेर हो जिसमें से चावल निकाल दिए गए हों, केवल उस चावल के छिलके को आप कितना ही मारो, सुबह से रात तक उसको भले आप साफ करो करो करो, लेकिन उसके अंदर एक भी दाना चावल का नहीं है, तो आपने जितना भी समय तक उसके उसमें से चावल निकालने का प्रयत्न किया वो सारा का सारा बेकार हुआ। उसी तरह इस भौतिक जगत में आप भले कितने ही धर्मों को सुनिश्चित तरीके से प्राप्त कर तो करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन यदि भगवान के शब्दों के प्रति, भगवान के अस्तित्व के प्रति, भगवान की करुणा के प्रति आपको श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है तो श्रम एव ही केवलम। क्योंकि आप अपने दूसरे धर्मों को, जितने भी आपके वर्णाश्रम के धर्म हैं, उनको करने के बाद मीटर क्या निकलना चाहिए, उसको करने के बाद सफलता क्या है, वो यदि देखनी है तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 13 में बताया जाता है, अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिष्ठितस्त धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण, कि यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह क्या है, संसिद्धिम हरितोषण, कि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो या नहीं। आप सारे कर्तव्य करो और देखो कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो आप सही जा रहे हो, लेकिन यदि आप सारे कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो, सारे धर्मों को कर रहे हो, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो सब श्रम एव ही केवलम, आपने सिर्फ अपने समय का अव्यय अपव्यय किया है, समय को जाया किया है। अगर भगवान को अपने जीवन से अप्रसन्न नहीं कर सके तो, और भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न होता हूँ जब आप मेरे पर श्रद्धा करते हो, जब हम भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे, तो मेरे पास आओगे अगर मुझ में श्रद्धा रखोगे, मन से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। लेकिन यदि हमें भगवान के शब्दों पर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर हम कभी भी कंसंट्रेशन के साथ भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या है, हम श्रद्धा को समझ ही नहीं पाए अभी तक। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के विषय में बताते हैं, चैप्टर नंबर 17 में भगवान कहते हैं अर्जुन श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। भगवान कहते हैं श्रद्धा के विभाग है, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सत्वगुणी रजोगुणी तथा तमोगुणी। ये भौतिक स्तर पर है, ये श्रद्धा जो है वो भौतिक स्तर पर है। 17.4 में भगवान ने इसके विषय में बहुत विस्तार से बताया। भगवान कहते हैं यजन्ति सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रीतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जना। यजन्ति सात्विका देवान, जो सत्वगुणी श्रद्धा रखते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों में श्रद्धा रखते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो भूत प्रेतों में। यजन्ते तामसा जना प्रेतान भूतान गणाश्चन्ये यजन्ते तामसा गणा, जो तमोगुणी हैं वो भूतों प्रेतों में श्रद्धा रखते हैं। ये श्रद्धा के विभाग गुणों के अनुसार भगवान ने बताया, लेकिन भगवान ने बता दिया कि जो भी इन गुणों में रहकर कोई कार्य करेगा वो तो फंसेगा। सत्वम सुखम संजयते रजह कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमह प्रमादे संजयत युत। सत्वगुण में यदि कार्य करोगे तो सुख से बंधोगे, रजोगुण में कार्य करोगे तो सकाम कर्म से, और यदि तमोगुण में कार्य करोगे तो ज्ञान के ढकने से पागलपन से बंध जाओगे। लेकिन अब भगवान जिस श्रद्धा के विषय में बात कर रहे हैं उसके द्वारा तो भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभात, समस्त अशुभात से भौतिक क्लेशों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन सी श्रद्धा है, श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि ये वह श्रद्धा है जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं। वो कौन सी है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होया। यह वो श्रद्धा है जो एक व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि यदि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, यदि कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो सर्व कर्म कृत है। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो सारा संसार, सारे लोक, सारे ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि मैं एक 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 करके सारे ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करता रहूं और कृष्ण के विषय में ना सोचूं तो कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकूंगा और ना ही कोई धर्म का पालन कर सकूंगा। तो इस बात को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण, इतना सुंदर उदाहरण है कि कोई बेवकूफ से बेवकूफ अंगूठा छाप व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी, जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण 4.31.14 में बताया। अभी श्री प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में बताया, यथा तरो मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युते च। जैसे एक बहुत 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 विशाल वटवृक्ष हो, बहुत विशाल, उसकी बहुत सारी टहनियां हो, बहुत सारे पत्ते हो, बहुत सारा मतलब बहुत ही लंबा हो, 20 फीट का हो, तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे इस वटवृक्ष की रक्षा करनी है और एक एक पत्ते के ऊपर पानी डालना शुरू कर दे, स्प्रे उठाए और ऐसे ऐसे पानी डाले, उसके तने, उसके हर टहनी को, वृक्ष के सारे एरिया को वो पानी एक एक करके दे, लेकिन वो जड़ को छोड़ दे, जड़ के अंदर पानी नहीं डाले, तो भले वो कितना ही अच्छे तरीके से सारे वृक्ष को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, मगर क्या होगा, वो वृक्ष ज्यादा समय नहीं टिकेगा क्योंकि उसकी जड़ को पानी नहीं मिला। लेकिन यदि वो बुद्धिमान है तो उसे क्या करना चाहिए, तनों पत्तों और टहनियों को छोड़कर उसकी जड़ में एक बकेट पानी डाल देना चाहिए, है ना। यदि जड़ में पानी डाल दिया तो पूरा वृक्ष जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बेवकूफ हो और ये सोचे कि देखो मैं रोजाना मुंह में खाना डालता हूँ और वो पेट में चला जाता है, इस वजह से तो मेरी सारी बाकी की इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि बादाम से दिमाग तेज होता है, इसलिए बादाम जो है वो सर पे मारूंगा, उस सर पे खिलाऊंगा, और गाजर से क्योंकि आंखें तेज होती हैं, इसलिए गाजर का जूस अब मैं आंखों में डालूंगा, और जिस चीज से जो जो बॉडी का पार्ट जो है वो संतुष्ट होता है या पुष्ट होता है उसको वो खिलाऊंगा, तो वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करेगा बल्कि ज्यादा दुखी करेगा, है ना। लेकिन यदि वो सारा का सारा भोजन जो कुछ भी है खाने का वो मुख के द्वारा पेट में डाल देता है तो फिर संपूर्ण इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान के प्रसन्न होने से संपूर्ण प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10.8 में भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभु, जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक लोक में जितने भी जीव हैं मैं उनका स्वामी हूँ। तो यदि स्वामी संतुष्ट हो गया तो फिर सब जीव संतुष्ट हो जाते हैं। और आज हमें भगवान यह बता रहे हैं कि आपको इस भगवत भक्ति के मार्ग पर, इस धर्म पर श्रद्धा रखनी है, और अगर श्रद्धा रखोगे तो फिर क्या होगा, मुझे प्राप्त करोगे। केवल मुझे प्राप्त करने का मार्ग श्रद्धा से स्टार्ट होता है। तो इसका अर्थ है कि हमें पूरा जीवन श्रद्धा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा अशुद्ध दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। अगर तुम्हें इस धर्म पर भक्ति में अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो कोई जीव को यदि भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ दे, भाई है ही नहीं मुझे श्रद्धा तो मैं भक्ति क्यों करूं। नहीं, क्योंकि हर एक जीव के जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्राप्ति है। यदि वो कृष्ण को प्राप्त नहीं करता है तो वो चाहे किधर भी चला जाता है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपैति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। आप चाहे किसी भी लोक में चले जाओगे, चाहे आप ब्रह्म लोक में भी चले जाओगे, चाहे आप स्वर्ग लोक में भी चले जाओगे, किधर भी चले जाओगे, आपको आनंद नहीं आएगा, आपको परमानेंट वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आपको श्रद्धा एकत्रित करनी है। याद रखिए भक्तों, श्रद्धा हमारा अधिकार नहीं है, यह श्रद्धा तो हमें प्राप्त करनी है अपने प्रयत्न से, अपने प्रयासों से। ऐसा नहीं है कि बस हमने इच्छा की और श्रद्धा में प्राप्त हो जाएगी। नहीं, श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, और जिसके पास भक्ति योग नहीं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रद्धा कहाँ से मिलती है। हमें वहां जाना चाहिए जहां से श्रद्धा मिलेगी। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा तो भक्तों की संगति से प्राप्त होती है। महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अब आगे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन वास्तव में जिनका जो भाग्यहीन नहीं है ना, उनको भगवान के भक्तों का संग मिलता है। ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। बहुत बहुत ब्रह्मांडों में भ्रमित करते 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 कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अर्थात ये भक्ति लता का बीज क्या है, ये श्रद्धा है, वो उसे प्राप्त हो जाती है। कैसे, भक्तों की संगति से। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धा तो भक्तों की संगति के लिए संगति से प्राप्त होती है। इसलिए हमें पूरा जीवन केवल ये इच्छा करनी चाहिए, हृदय से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिले जिसके साथ रहकर हम अपनी श्रद्धा को डेवलप कर सकें। क्योंकि यदि श्रद्धा नहीं होगी तब तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए सदैव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो है वो हमारी श्रद्धा है। इसलिए हमें पूरा जीवन वही कार्य करना चाहिए, वही कार्य करने के लिए ईगर होना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा बढ़े। और वो कार्य क्या है जानते हो, वो कार्य वह है जो आप अभी कर रहे हो। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं ना, वैसे तो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम केवल भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। लेकिन उस भगवान के नाम में हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, उसी के लिए हमें भगवान के विषय में श्रवण करना है। यदि हम कंटिन्यूस श्रवण करते रहेंगे तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी डेवलप हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस श्रद्धा से कभी नहीं डगमगाएंगे। इसलिए हमें पूरा जीवन भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जब शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हम भगवान के शब्दों को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोकों को श्रवण करते हैं, तो फिर उसे क्या होता है, हमारी श्रद्धा बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए श्रवण जो है हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई मौका मिस नहीं करना चाहिए। जब हमें किसी भक्त से, शुद्ध भक्त से यदि हमें श्रवण करने के लिए मिलता है तो हमें उसके लिए अवश्य तत्पर रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तीन प्रकार के श्रद्धावान व्यक्तियों का वर्णन किया है। देखो श्रद्धा की कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, प्रथम कोटि के श्रद्धावान व्यक्ति वो होते हैं जो भक्ति साहित्य में निपुण होते हैं। मतलब जितने भी साहित्य का मतलब होता है, जितने भी भक्त हैं जितने भी शास्त्र हैं भक्ति के, उनमें निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और उसे उसके ऊपर पूरा विश्वास भी होता है, पूरे कंठस्थ होते हैं, पूरा सब कुछ पता होता है। और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, अब उसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ हो गई है और कृष्ण भावनामृत का वह प्रथम कोटि का व्यक्ति है, जिसे सारे शास्त्रों का ज्ञान हो और उसके अंदर पूरी श्रद्धा हो, वो ही सबसे ज्यादा परफेक्ट श्रद्धावान भक्त है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, दूसरी कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मतलब पहले वाले को पूरा शास्त्रों का ज्ञान है और श्रद्धा बहुत तीव्र है, इसलिए वो क्या कर सकता है, वो किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है। अब उसको पूरा ज्ञान है, उसकी श्रद्धा भी बहुत टॉप की है, तो फिर वो क्या, किसी को भी यदि प्रचार करता है तो फिर वो उसको भक्ति में ला सकता है। मगर जो दूसरे द्वितीय कोटि के होते हैं, उनको ज्यादा शास्त्रों के विषय में पता नहीं होता, श्लोक इत्यादि नहीं पता होते हैं, लेकिन फिर भी स्वतः उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे उसे ग्रहण करते हैं। बस उसको या तो किसी शुद्ध भक्त की संगति मिल गई है जिसके कारण उसकी श्रद्धा डिवेलप हो गई, मतलब उसको ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त के कारण या पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और उसकी श्रद्धा बहुत तेज हो गई, जिसके कारण वो अब कृष्ण भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानकर वो कृष्ण की भक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तीसरी कोटि के व्यक्ति के विषय में बताते हैं, जिसे ना तो पूर्ण ज्ञान होता है और ना ही पूर्ण श्रद्धा होती है। दूसरे वाले को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है लेकिन श्रद्धा उसकी भी दृढ़ होती है। पहले वाले को तो ज्ञान भी पूर्ण होता है और श्रद्धा भी परफेक्ट होती है, लेकिन जो तीसरा वाला होता है उसे ना ही पूर्ण ज्ञान होता है ना ही पूर्ण श्रद्धा होती है। तो फिर वो क्यों करता है कृष्ण की भक्ति, क्योंकि सरलता से प्राप्त हो जाती है। जैसे आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बिल्डिंग में कभी हरी कथा होता है, कभी कीर्तन होते हैं, प्रसाद होता है, आप लोग को अवसर मिलता है, आप भक्तों के साथ बैठ जाते हो, थोड़ी देर कीर्तन करते हो, थोड़ी देर ना फिर उसके बाद प्रसाद खाते हो, या फिर मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं जब क्लास होती है, तो सबकी श्रद्धा एकदम परफेक्ट नहीं होती है। उसमें से कुछ द्वितीय कोटि के होते हैं, कुछ प्रथम कोटि के भी होते हैं और कुछ तृतीय कोटि के जीव होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो आते हैं भगवान के श्लोकों को, भगवत गीता को श्रवण कर लिया, प्रसाद खा लिया, और वो आते हैं केवल सरलता से, भाई मेरे सारा फ्रेंड सर्कल जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, थोड़ी कथा सुनूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, प्रसाद खा के आऊंगा। तो उसके अलग अलग उद्देश्य भी होते हैं। इसी श्री रूपा जी बताएं कि जब हम प्रचार करते रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज ऐसे लोगों के साथ हमारा मिलना होता है जो किसी उद्देश्य से हमारे साथ जुड़ते हैं, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आए थे तो पूरी श्रद्धा नहीं थी उनके अंदर, केवल कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान की शरण में आए थे, और जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो फिर उनको अब भगवान में तो क्योंकि पूरी श्रद्धा है नहीं, तो फिर भगवान की जरूरत भी नहीं है, जब दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। यानी कि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सौदागिरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जो प्रथम कोटि का व्यक्ति होता है उसके तो च्युत होने का अर्थात भक्ति से अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उसके साथ जो भी संगति करेगा वो भी भगवान का भक्त हो जाएगा। द्वितीय जो कोटि के व्यक्ति होते हैं जिनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है परंतु ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो खुद तो नहीं गिरते लेकिन दूसरों को कभी भी, मतलब उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता है तो दूसरों को प्रीच नहीं कर पाते। लेकिन जो तीसरे कोटि के होते हैं वो उनकी संभावना है कि वो फिर भक्ति से हट जाते हैं, कभी कर्म योग में लग जाते हैं तो कभी ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, कभी किस में, कभी किसी देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, कोई और उसको संगति मिलती है, वो बोलता है कि नहीं कृष्ण भक्ति में तो फायदा नहीं है, बल्कि मैंने उस देवता का ये उपवास रखा तो उसके कारण मुझे ये लाभ मिला, तो उसको यह लगता है कि बस मुझे लाभ यहाँ से नहीं मिल सकता, वहां से मिल सकता तो उधर चला जाऊं। मतलब वो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ को देखता है कि मुझे भौतिक स्तर से लाभ कौन सा मिल रहा है, तो समझो कि वो उसी में संतुष्ट हो जाता है, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जिसको भगवान के अंदर श्रद्धा होती है, उसे यदि भौतिक लाभ ना भी मिले, भौतिक स्थिति यदि उसकी ना भी सुधरे, यदि भौतिक लिहाज से उसको दुख भी मिले, तब भी वो ये माने कि मुझे जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में मेरा कल्याण है, क्योंकि कृष्ण अवश्य मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, कृष्ण अवश्य मेरा कल्याण ही कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये एक अलग बात है, परंतु कृष्ण सदैव मेरा कल्याण करेंगे, इस बात पर दृढ़ श्रद्धा होती है, वो अपने पद से कभी भी नीचे नहीं उतरता। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण के पास संपूर्ण पावर है, हमारी समस्त समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा कृष्ण है, तो हमें कभी भी अपनी समस्याओं के कारण कृष्ण को छोड़कर किसी और की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है दीन, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पति, वो हमारे पति हैं, और एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म होता है कि चाहे वो किसी भी हाल में रहे परंतु अपने पति के संरक्षण में रहे, अपने पति को छोड़कर वो किसी की ओर ना निहारे, यही एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है। तो एक भक्त जो है उसका यही धर्म है कि चाहे उस पर कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो कृष्ण को छोड़कर किधर भी दूसरी ओर ना निहारे, उसे ये पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हम कृष्ण को छोड़कर दूसरी ओर जाते हैं तो इसका मतलब जानते हो क्या है, हम ये सोचते हैं कि कृष्ण में वो शक्ति ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसीलिए वो दूसरे, क्योंकि स्त्री तभी तो दूसरी ओर जाती है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो समझती है कि मेरा पति इसकी मेरी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। तो भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, भक्ति के अंदर भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, अनन्य और कोई नहीं, केवल तुम्हारा चित्त मुझ पर टिका होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, मेरी चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक प्रगति का डिपेंड जो है वो किस पर है कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न रहे, संसिद्धिम हरि तोषणा। इस बात को समझाने के लिए, श्रद्धा को समझाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। श्री प्रभुपाद की एक छोटी सी बुक है राज विद्या, उसमें ना श्री प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक नंबर थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं अश्रद्धदाना पुरुष, उसके तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताई है। उसमें क्या होता है कि एक ब्राह्मण होता है जो भगवान की भक्ति करता है, और एक बार नारद मुनि उसे मिलते हैं, वो नारद मुनि जा रहे होते हैं नारायण नारायण करते हुए, तो ब्राह्मण उससे पूछते हैं नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हो, तब नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। बोला अच्छा तुम वैकुंठ जा रहे हो, मेरा एक काम करना, भगवान से पूछना कि मुझे कब आप मोक्ष प्रदान करोगे, मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। तो फिर है ना नारद मुनि ने कहा ठीक है मैं जाके भगवान से पूछ कर आता हूँ। तो आगे जा रहे थे नारद मुनि, मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, जा ही रहे थे तो रास्ते में उनको एक मोची दिखा, मोची जो जूते को सिलाई करता है ना वो दिखा, और उसने जब नारद मुनि को देखा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, और उसे आसन दिया नारद मुनि को, कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं तो कितना शुद्र जीव हूँ लेकिन मुझे शुद्ध भक्त का दर्शन हुआ, मुझे लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान यदि किसी पर कृपा करते हैं तो उसको किसी शुद्ध भक्त से मिला देते हैं, आज मेरा जीवन लगता है मुझे सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि अभी मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बताओ, मैं भगवान से आपके बारे में बोलूँगा। तो नोची ने कहा कि आप भगवान से पूछना, क्या कभी मुझे आपके दर्शन होंगे, क्या मैं कभी आपके दर्शन कर सकूँगा। नारद मुनि ने कहा हाँ, मैं भगवान से पूछूँगा जाके। तो भगवान के पास गए नारद मुनि वैकुंठ लोक में, और भगवान से कहा कि मैं मृत्यु लोक से आया हूँ। भगवान ने कहा अच्छा। बोला वहाँ पर एक ब्राह्मण है, वो भक्ति करता है आपकी, वो पूछ रहा था भगवान मुझे आपके दर्शन कब होंगे, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि उस ब्राह्मण की मुक्ति में अभी करोड़ों जन्म लगेंगे, उसकी अभी मुक्ति नहीं होगी। तब नारद मुनि ने कहा अच्छा, मृत्यु लोक में जीव कितने अभागे हैं, इतना इतने जन्मों तक उन्हें भक्ति करनी पड़ती है, तभी जाके आपके दर्शन होते, मेरा कितना सौभाग्य है। तो फिर है ना, फिर बोला कि मैं एक मोची से भी मिला था। अब नारद मुनि सोच रहे हैं जब ये ब्राह्मण है उसको यदि 100 जन्मों के बाद भगवान के दर्शन होंगे, तब ये नारद, ये जो मोची है उसको तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, अभी इसके बारे में पूछूं या नहीं पूछूं। फिर भी बोला चलो ठीक है, पूछ लेता हूँ, आया हूँ तो पूछ लेता हूँ, बताना पड़ेगा उसको भी जाकर। तभी बोला कि एक मोची भी था, वो भी पूछ रहा था क्या मुझे अभी मोक्ष प्राप्त होगा, आपके दर्शन होंगे कभी जीवन में, कभी भी किसी भी जीवन में। तो भगवान नारायण ने कहा हाँ, उसको बोलो कि इसी जीवन में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। नारद मुनि हैरान हो गए, बोला वो पहले मैंने ब्राह्मण के बारे में पूछा, उसको आपने बोला 100 जन्म लगेंगे, और ये मोची इसी जन्म में आपको प्राप्त करेगा। तब भगवान ने कहा हाँ। तो बोला मैं उनको जाके बताऊंगा तो वो मुझसे जरूर पूछेंगे कि क्यों, तो मुझे क्यों का भी आप उत्तर दे दीजिए, क्यों ब्राह्मण को इतने वर्ष लगेंगे और मोची इसी जन्म में आपको प्राप्त कर लेगा। तब भगवान ने कहा तुम्हें उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल उनको ये बताना, जब वो पूछेंगे कि भगवान इस समय क्या कर रहे थे, तो तुम उनको कहना कि भगवान सुई का जो छोटा ऊपर से होल था ना, उसमें से हाथी को गुजार रहे थे, हाथी को गुजार रहे थे, ये काम कर रहे थे। तो बोला अच्छा। वो नारद मुनि चक्कर खा गए, बोले भगवान पता नहीं क्या क्या संक्षिप्त में बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जाता हूँ नीचे जाके देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है इसका। तो गए पहले ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण ने नारद मुनि को देखा, बोला नारद जी आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपने भगवान से मेरे विषय में पूछा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तब ब्राह्मण को नारद मुनि ने कहा हाँ ब्राह्मण देव, मैंने भगवान से पूछा और भगवान ने कहा कि आपकी मुक्ति 100 जन्मों के बाद होगी, अब भी नहीं होगी। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध भी आया, बोला 100 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, मैं ब्राह्मण हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, पूरा मंदिर संभालता हूँ, और तुम कह रहे हो 100 जन्म तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुझे तो लगता है तुम असली के नारद हो ही नहीं, और तुम भगवान के पास गए ही नहीं थे, लगता है कि किसी है ना नाटक में काम करने वाले नारद मुनि हो, असली के नारद मुनि नहीं हो, तुम भगवान के पास गए ही नहीं होगे, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं। अच्छा चलो बताओ, तुम अभी भगवान के पास होकर आयो ना, मुझे ये बताओ इस समय भगवान कर क्या रहे थे। तब नारद मुनि ने कहा कि इस समय भगवान सुई के ऊपर वाले होल से हाथी को गुजार रहे थे। तभी उस ब्राह्मण ने कहा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम भगवान के पास गए नहीं थे, भगवान को और भी बहुत सारे काम है, क्या भगवान ही बच्चों की तरह, अभी सुई की नोक से धागा निकालना भी कितना मुश्किल होता है, एक डोरी थोड़ी मोटी होगी तो भी नहीं जाएगी, लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान सुई की नोक से हाथी गुजार रहे थे, भगवान हाथी को कैसे गुजारेंगे सुई की नोक से, सुई की नोक तो छोटी सी होती है, मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी नारद मुनि ने इसकी बातें सुनी और फिर वो गया मोची के पास, और मोची ने जब नारद मुनि को देखा तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हुए। तब उसने कहा कि नारद जी आपका दर्शन मुझे दोबारा से प्राप्त हुआ, इस संसार में भक्तों का एक बार भी शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझो जीवों का कल्याण हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से जो जीवों का कल्याण करते हैं, आज मुझे दोबारा आपका दर्शन मिला है, मैं समझता हूँ भगवान वाकई में मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे बार बार आपका दर्शन होता है। मुझे बताइए आप भाई कुछ कहे थे? बोला हाँ। तो मुझे ने बहुत संकुचित होते हुए पूछा, क्योंकि वो जानता था कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करता हूँ जिससे मैं भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ, तो मैं भला भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा। तब मोची ने फिर भी पूछा हिम्मत करके, नारद मुनि क्या आप भगवान से पूछा कि मुझे भगवान के दर्शन कब प्राप्त होंगे, मोक्ष कब मिलेगा? तब नारद मुनि ने कहा हाँ मैंने पूछा। तो बोला फिर भगवान ने क्या कहा? बोले भगवान ने कहा तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। तब नारद मुनि की इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरान हो गया। बोला इस जन्म में? नहीं नहीं, मेरे तो कर्म इतने अच्छे नहीं हैं और ना ही मेरे अंदर कोई योग्यता है, मुझे नहीं लगता कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे, लेकिन आपकी कृपा से, क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्त का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि इसी मैंने जीवन में यही आपकी कृपा प्राप्त करके ही मैं भगवान को प्राप्त करूंगा और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, केवल आपके दर्शन से ही मेरे सारे अपवित्रता मेरे जीवन की समाप्त हो गई है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जीव की अपवित्रता नाश होती है, लेकिन केवल दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं, ये आप जैसे भक्तों का गुण है। आज मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और जैसे ही नारद मुनि के ना शरणागति उसने स्वीकार कर ली, तो इस बात से गारंटी है कि उसका इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब भगवान के विषय में वो जानना चाहते थे। आप वैकुंठ गए थे तो मुझे बताइए ना इस समय भगवान क्या कर रहे थे? बोले बताओ भगवान क्या कर रहे थे? बोला हाँ। बोले तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। यकीन क्यों नहीं आएगा, बताइए तो सही, आएगा क्यों नहीं आएगा? तो बोला भगवान इस समय सुई की नोक से हाथी बिता रहे थे, हाथी को गुजार रहे थे। तो मोची ने जब ये सुना तो उसको रोमांच होने लगा, नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगी और कहने लगे वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है, आपको कोई नहीं समझ सकता, देव दानव किन्नर यक्ष वेद कुछ कोई भी आपकी महिमा को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, आपकी महिमा अपार है। तो नारद मुनि ने कहा तुम्हें यकीन आ गया इस बात पर कि भगवान सुई की नोक से हाथी गुजार रहे थे? बोला आपको मैं एक बात बताऊं नारद जी, और यहाँ पर जो बात मोची ने कही है ना वो है हमारी श्रद्धा की कसौटी। आप सब ध्यान से सुनिएगा कि उसने क्या कहा है। वो मोची कह रहा था कि जो जहां पर मैं बैठ के जूते सिलाई करता हूँ ना, वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, बहुत बड़ा हजारों साल पहले का एक वट वृक्ष था, उसके अंदर फल थे फूल थे। तो बोला ये जो भगवान है ना, इतना बड़ा वृक्ष है, उसमें बहुत सारे फल हैं और हर फल के अंदर हजारों बीज हैं और एक एक बीज के अंदर भगवान ने एक एक वृक्ष डाल रखा है। इतना छोटा सा बीज है और उसके अंदर भगवान ने पूरा का पूरा वृक्ष, एक जगह पर जब हम एक बीज को बोते हैं तो उसमें से एक पूरा वृक्ष निकलता है और उस वृक्ष में ऐसे हजारों फल होते हैं। जब मेरा भगवान एक बीज के अंदर हजारों वृक्ष और उस उगने वाले वृक्ष के अंदर एडवांस में जितने भी बीज फल होंगे उनके समस्त बीजों में एक एक वृक्ष डाल सकता है, तो ऐसे भगवान के लिए एक सुई की नोक में से हाथी गुजारना कौन सी बड़ी बात है। भगवान के अंदर अपार शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं, वह स्वराट हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, इस पूरे संसार का सृजन पालन और लय कर सकते हैं, तो एक सुई के नोक में से हाथी गुजारने में कौन सी बड़ी बात है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, प्रत्येक जीव के प्रत्येक कार्य को स्मरण करके उसको उसके भाग्य के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको वस्तु प्रदान करते हैं, तो ऐसे भगवान जो संपूर्ण जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं और उन्हीं के अनुसार उन्हें वह भाग्य प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान के लिए एक सुई की नोक में से हाथी गुजारना कौन सी बड़ी बात है। नारद जी, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो वास्तव में भक्तों यही श्रद्धा है कि हम समझें, हम इस बात को समझ जाएं कि भगवान जो चाहे कर सकते हैं और हमारे जीवन का कल्याण केवल कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत हो। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो समझो हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो रहे हैं। यही श्रद्धा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहेगा, भगवान के अंदर श्रद्धा भराइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी भगवान के श्री चरणों में, भगवान के शब्दों में, भगवान के नाम में श्रद्धा बढ़े। आई बोल।